रामचंद्र की जय। मारमुट वंशी वाले की यो प्रकरण है। किसी भाई ने पूछा कि गृहस्थाश्रम के मां मुक्ति कैसे हो। इसके उत्तर में ये बात बतलाई जाती है, मुक्ति जो है या यूं समझो परमात्मा की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति या सभी आश्रमों में और सभी वर्णों में होती है। इसके लिए अमुक वर्ण और अमुक आश्रम में मनुष्य का कल्याण नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कल्याण के मां मनुष्य मात्र का अधिकार है। भगवान अनंत कोटि जो जीव हैं, असंख्य जो जीव हैं, उनमें से छांट करके और उसको मनुष्य बनाते हैं कि जो आपने सबसे श्रेष्ठ हो। तो मनुष्य मात्र को मुक्ति में अधिकार है। फिर गृहस्थाश्रम की तो बड़ी महिमा गाई है महाभारत के शांति पर्व में, या महिमा गाई है कि तीनों जो आश्रम है घर से अलग, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, उनका सबका निर्वाह गृहस्थ से होता है। इसलिए गृहस्थाश्रम की बड़ी भारी प्रशंसा की है। दूसरी बात यह कि सभी शास्त्रों के बीच के मां सभी आश्रमों वालों की और सभी वर्ण वालों की मुक्ति हुई है। इसके लिए दृष्टांत मिलता है। भीष्म जी जो है आज ही उन ब्रह्मचर्य का पालन किया और मुक्त हो गए। और वर्तमान युग के बीच के मां स्वामी शंकराचार्य जी महाराज समझो कि आज ही उन ब्रह्मचर्य का पालन किया और अच्छे महात्मा माने गए हैं। और गृहस्थाश्रम की तो बात ही क्या, जितने जो मुनि थे अब अधिकांश गृहस्थाश्रम में थे। याज्ञवल्क्य मुनि जिसके दो स्त्रियां थी, और ज्ञानियों में उस कोटि के ज्ञानी माने गए, और वेदव्यास जी महाराज जैसे गृहस्थी थे, सुखदेव जी उसके लड़का हुआ, वेदों का विभाग करने वाले हुए और 18 पुराणों की रचना उन्होंने की, महाभारत की रचना की। और वशिष्ठ जी महाराज जो है जिनके श्री रामचंद्र जी के गुरु थे और उनके बहुत से पुत्र हुए और ज्ञानियों के मां वे एक नंबर ज्ञानी माने गए। तो गृहस्थाश्रम के बीच में बहुत से मुनि हुए। गौतम जो है अत्रि है, वशिष्ठ है, कश्यप है, इनके बड़ा बड़ा परिवार था। कश्यप तो प्रजापति माने गए हैं, प्रजा के पति, बहुत सी संतान थी। राजा युधिष्ठिर, अर्जुन ये सब गृहस्थी से ये उस कोटि को प्राप्त हुए। और राजा जनक जिनका नाम गीता में आता है, भगवान ने गीता की 3 अध्याय के 20 श्लोक में बतलाया है कि कर्माय संसिद्धि मां सीता जनकाद है। जनक को आदि लेकर के जो बहुत से हुए हैं वे कर्मों के द्वारा ही संसिद्धि माने परमात्मा की प्राप्ति रूप जो परम सिद्धि उसको प्राप्त हुई। अब वर्ण की बात आपको बतलाता हूं। ब्राह्मणों के वर्ण की बात तो आपको बतलाई, पर क्षत्रियों की भी कुछ बतलाई कि अमरीश जो है ये क्षत्रिय था, राजा था, इसका उद्धार हो गया। राजा चोल रहे हैं, वे भी भगवान के भक्त थे और परम गति को प्राप्त हुए। राजा चोल को खुद भगवान विमान में बैठा करके ले गए। और राजा हरिश्चंद्र माने एक क्या बहुत से राजा हुए। जिनको परमात्मा की प्राप्ति हुई, जो परम पद को पहुंचे, इसे भ्रष्टाश्रम की अमर है करके वैश्यों के बीच की अमां, जैसे तुलाधर वैश्य थे, जिसकी कथा महाभारत में भी आती है और पद्म पुराण में आती है। उसके वहां नरोत्तम ब्राह्मण गया था, जाकर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपसे किसी शिक्षा लेने के लिए आया हूं, तो मुझको आप शिक्षा दो। तो तुलाधर वैश्य ने यह बात कही कि अभी यहां ग्राहकों की भीड़ बहुत है, या रात की 9 बजे तक भीड़ रहेगी, यानी 3 घंटा रात बीतने तक भीड़ रहेगी, उसके बाद अवकाश मिलेगा, तब मैं आपको जो पूछोगे कहूंगा, और अभी तो मुझको अवकाश नहीं है, और आपको जल्दीबाजी हो तो यहाँ एक सज्जन अद्रो नाम वाला एक महात्मा, बड़ा सज्जन पुरुष है, उनके पास तुम चले जाओ, वे आपको उपदेश कर सकते। इतना कहने पर उसको क्रोध आ गया कि मैं तुम्हारे पास में शिक्षा लेने के लिए आया, तुम्हारे को फुर्सत भी नहीं है, अवकाश भी नहीं है। तो तुलाधर ने कहा कि महाराज, इस प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए। आपके द्वारा जो एक पक्षी, चिड़िया पक्षी भस्म हो गया, इस बात को मैं जानता हूँ, और आकाश के मां जो वाणी हुई थी आपके विषय में, उसको भी मैं जानता हूँ। उसने क्रोध करके एक चिड़िया को भस्म कर दिया था, तो तुलाधर सब कुछ जानता था। तो भगवान ने खुद ये बात फिर उस नरोत्तम को समझाई है कि ये तुलाधर जो वैश्य है, ये सबके साथ में सम व्यवहार करता है और सत्य व्यवहार करता है, इसके यहां झूठ कपट नहीं है। इसके प्रभाव से थी, इसके घर के ऊपर मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके सदा निवास करता हूं। तुलाधर जब मर करके गया, तो वो भगवान के परम धाम को गया, और नंद भद्र नाम का एक भगवान का भक्त हुआ है, वो भी उत्कोटि का था, उसकी कथा स्वामी स्कंद पुराण में आती। आज जो आपको दिन में कथा सुनाई थी श्रवण की, उसका पिता जो है सो बड़ा तपस्वी था, उसका नाम याद नहीं रहा, वो वैश्य ऋषि हुआ है, वैश्य होकर के ऋषि हुआ। तो इसी प्रकार से थी शूद्रों के बीच के मां भी बहुत से मुक्त हुए। सबरी भिलनी जो है नीची जाति की थी, केवट नीची जाति का था, धर्म व्याध ये नीची जाति का था, और मूक चंडाल जाति का चंडाल था, माता पिता की सेवा के प्रभाव से मुक्त हो गया, ये कथा भी आपको बतलाई थी। तो इस प्रकार से थी बहुत से ऐसे शूद्र योनि के मां मुक्त हो गए। ये क्यों, आप गीता में देख लो, गीता तो विधि वाक्य है, उदाहरण वाक्य से भी विधि वाक्य बलवान होता है। गीता कहती है कि मांग पार्थ पाश्रित ये पिशु पाप योनि हो, अस्त्रियो वैश्वासता शूद्रास्ते भी आंति परांगतिम। हे पार्थ, मेरी शरण लेकर के चाहे अस्त्री हो और चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो और चाहे पापियों वाले चंडाल भी क्यों नहीं हो, वे भी सब परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी मुक्त हो जाते हैं। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि चंडाल है, भीड़ है या कोई भी है, उसकी भी मुक्ति हो जाती है भगवान की भक्ति के प्रभाव से। तब और उनकी तो बात ही क्या है, मलेच्छों का राजा जो गू है, ये भी जाति का भील था, भगवान की भक्ति के प्रभाव से भगवान का मित्र हो गया और बड़ा उच्च कोटि का भगवान का भक्त था। भगवान की भक्ति से मुक्ति हो जावे, परमात्मा की प्राप्ति हो जावे, इसमें तो करना ही क्या है। अपने अपने धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन करे तो उससे उसका कल्याण हो सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण वाले अपने अपने धर्म का पालन करने से मुक्त हो सकते हैं। माननीय गीता की 18वें अध्याय के मां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके धर्मों की व्याख्या की। ब्राह्मण का धर्म गीता की 18वें अध्याय के 42 के श्लोक में बताया और क्षत्रिय का 43वें और शूद्र और वैश्य का 44वें। सबका लक्षण बतला के ये कहा कि अपने अपने कर्मों में लगा हुआ और जिस प्रकार से परम सिद्धि में मुक्ति को प्राप्त होता है वो बात मैं तुम्हारे को बतलाता हूँ। फिर 46 के श्लोक में ये बात साफ कह दी कि ये तो प्रवृत्ति भूतानां येन शर्म इदं ततम अस्व कर्मात्म व्यर्थ सिद्धि बिंदती मानव। अपने अपने कर्म में लगा हुआ पुरुष किस प्रकार जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है वो बतलाता हूँ। ये कहकर भगवान कहते हैं कि ये तो प्रवृत्ति भूतानांगीन श्रम तथम जिस परमात्मा से इस संसार की उत्पत्ति हुई है और जो परमात्मा इस संसार के मां व्यापक है उस परमात्मा को अपने अपने कर्म के द्वारा उनको पूज कर यानी उसे की सेवा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये बात भी जगह जगह आई है कि माता पिता की सेवा करने से पुत्र का कल्याण हो जाता है और माता पिता और पुत्र है तब गृहस्थाश्रम है ही और पति की सेवा करने से असली परम गति को प्राप्त हो जाती है। तो पति की सेवा श्री करती है तो गृहस्थाश्रम में ही करती है। अब ये बात है कि किस प्रकार से कर्म करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त हुए तो उसके लिए बहुत से मार्ग बताए हैं। कर्म योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, सभी मार्गों के द्वारा सभी गृहस्थी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ में रहकर के निष्काम भाव से कर्म करने से मनुष्य का कल्याण होता है। संन्यास कर्म योगस्थ निश्रयास कर्म हो तरस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। ये गीता की 5वें अध्याय का 2वां श्लोक है। भगवान कहते हैं श्रेष्ठ है संन्यास यदि संन्यास आश्रम को ही लेवे तो भी एक प्रकार से ये उसका अर्थ बनता है कि उसे गृहस्थाश्रम अच्छा है और नहीं तो भगवान ने जिस दृष्टि से कहा वो दृष्टि यह है कि ज्ञान योग से थी कर्म योग श्रेष्ठ है। दोनों कल्याणकारक होने पर भी ज्ञान योग से थी कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों? कि उसकी प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं कि ये मार्ग बड़ा सुगम है। गेस निसन्यासी योने दृष्टि लंकांक्षति निर्द्वंद्वी महाभाव सुखम बंधात परमुच्यति। ऐसा जो गृहस्थी है कर्मयोगी कर्म करने वाला पुरुष उसे गृहस्थी को कर्मयोगी को नित सन्यासी समझना चाहिए। वो सदा ही ऐसा सन्यासी है यानी ज्ञानी है। कैसा वो गृहस्थी के यो न दृष्टि न कांक्षती न तो किसे द्वेष करता है और न कोई चीज की आकांक्षा करता है। निर्द्वंद्व ही महाभावो सुखम बंधात परमुच्यते। हे महाभावो जो द्वंद्व से रहित है वो सुख पूर्व संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। द्वंद्व क्या कि राग द्वेष हर्ष शोक ये सब द्वंद्व है। और भी भगवान ने गीता में बहुत सी बातें बताई। कर्मयोग जो है
ये गृहस्थाश्रम ही बनता है, संन्यास आश्रम में तो स्वरूप से ही मनुष्य कर्मों का त्याग कर देता है, स्वयं भगवान गृहस्थाश्रम में रह करके के योग का संपादन करते थे लोक संग्रह के लिए। भगवान के लिए तो कुछ करते हैं नहीं, उनकी तो सारी क्रिया संसार के कल्याण के लिए होती है। भगवान खुद कहते हैं गीता की तीसरी अध्याय के 22 के श्लोक के बीच के मां कि नमे पार्थास्त कर्तव्यम त्रिश लोकेशु किंचन नानवापतवापतरम वर्त एवच कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोगों के बीच में मुझको कुछ भी कर्तव्य नहीं है कि ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, और न कोई ऐसी बात है कि अप्राप्त वस्तु की कोई प्राप्त करनी हो। मैं तो आपत काम हूं, सब कुछ मुझको प्राप्त है, तब भी मैं कर्मों में बरतता हूं या न कर्म करता हूं। क्यों? कि यदि हम मैं बरते हूं जातु कर्म तंदित है मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वश है। हे पार्थ, यदि हम न बरते माने यदि मैं सावधान हुआ और कर्मों में न चलूं, तो दूसरे लोग भी कर्मों को निर्थक मान करके के मेरा उदाहरण देकर के कर्म छोड़ देंगे, तो मैं ही इसके लिए दोषी होऊंगा। इन सब बातों को विचारने से यह बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान को कोई कर्तव्य नहीं है तो भी भगवान करते संसार के कल्याण के उद्देश्य। किंतु साधक पुरुष भी संसार के कल्याण के लिए कर्म सो कर सकता है। पूर्व के जमाने में जितने जो महात्मा हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, भक्त हुए हैं, अधिकांश गृहस्थाश्रम ही हुए हैं। इस लोक के बीच के मां जो साधक पुरुष है और विषयों में आसक्ति भी है, तो वे मरकर के स्वर्ग को जाकर स्वर्ग के भोगों को भोग करके और फिर पवित्र लक्ष्मी मानों के घर में उसका जन्म होता है। और कोई ऐसा है कि दृष्ट है और परमात्मा की प्राप्ति होने के पहले ही मर गया, तो वह मरकर के स्वर्गलोक को नहीं जाता। वह योगियों के कुल के मन जन्म लेता है, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, सब योगी हैं। तो जन्म जो ले रहा हो तो घृष्टी है ही, तो उत्तम घृष्ट के घर में उसका जन्म होता है योग वश पुरुष का, और वहां जाकर के फिर उसी गांव में लग जाता है। तो ऐसा जन्म जो है सो दुर्लभतर है। भगवान गीता के मां कहती हैं कि स्वर्ग को भोग करके और वह योग वश पुरुष है, सुचिनांग श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते। सुचिनान श्रीमताम कैसे वो श्रीमान माने लक्ष्मीमान वे हैं, ये पवित्र जो पुरुष हैं, पवित्र जो लक्ष्मीमान है उनके घर के में उसका जन्म होता है। किसका? योग भ्रष्ट पुरुष का। और जो भ्रष्टाश्रम में तो रहा किंतु एक प्रकार से बंगाल में भी मस्त था, और किसी कारण से थी मरने के समय में भगवान की स्मृति हुई नहीं, तो उसकी फिर क्या दुर्लभ ही नहीं दुर्लभता है। जो गृहस्थी है और महात्मा है, योगी है, उसके कुल के मां जिसका जन्म होता है, अधिकांश के मां उसका उद्धार ही हो जाता है, उस बालक का कल्याण ही हो जाता है।
बैराग में भी मस्त था, और किसी कारण से थी मरने के समय में भगवान की स्मृति हुई नहीं तो उसकी फिर क्या गति होगी। तो इसका ये उत्तर है कि अथवा योगी नाम वह कुले भवती थी मदाम एतद ही दुर्वतन लोके जन्म यदि दिशम। योगियों के कुल में योग भ्रष्ट पुरुष का जन्म होता है और इस प्रकार का जो जन्म है दुर्लभ ही नहीं दुर्लभता है। जो गृहस्थी है और महात्मा है योगी है उसके कुल के माँ जिसका जन्म होता है अधिकांश के माँ उसका उद्धार ही हो जाता है, उस बालक का कल्याण ही हो जाता है और वहां जाके के वह फिर एक प्रकार से उसी प्रयत्न में लग जाता है जो पहले जन्म में किया तो फिर शीघ्र उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान साफ कहते हैं कि अनाश्रित कर्म फलाशी से योगी से और न निर्गणी नचा करिए। जो पुरुष कर्म करता है यज्ञ दान तप सेवा आदि कर्म करता है किंतु उसके फल के आश्रय से रहित है, मन कर्म के फल को न चाहता हुआ और अपनी ड्यूटी बजाता है यानी अपने लिए जो कर्म नियत किए हैं उनको सुचारू रूप से करता है, मन कर्म को कर्म के फल को न चाह करके के और कर्मों का संपादन करता है, मन कर्म करता है शास्त्र विहित कर्म करता है तो वह योगी है और सन्यासी है। किंतु केवल क्रिया का त्याग कर दिया जगदान तप का त्याग कर दिया और अग्नि का त्याग कर दिया वह न तो सन्यासी है और न योगी। तो गृहस्थाश्रम के बीच में रह करके और निष्काम भाव से थी जो कर्मों का आचरण करता है उसकी गीता में तो प्रशंसा की है किंतु कहीं आप देख लो उसकी बड़ी भारी प्रशंसा है। गोपियां सब गृहस्थाश्रम में ही थी किंतु भगवान की भक्ति में तल्लीन होने के कारण से और भगवान की प्राप्ति कर ली। नारायण श्रीमन नारायण की जय। मोर मुक्त बंसी वाले की जय। भूतों की गृहस्थाश्रम के मां मुक्ति हुई है और अस्थि की पति की सेवा से और वैश्य की माने सत्य व्यवहार के द्वारा और माने चंद्र की ईश्वर की भक्ति से तो सबकी होती है। पद्म पुराण के बीच के मां एक कथा मिलती है वो आपको संक्षेप से बताई जाती है, उसका जो सार उतराया जाता है कि एक ब्राह्मण था उसका नाम था नरोत्तम। वह ब्राह्मण अपने माता पिता को छोड़ करके और वन के मां तपस्या करने के वास्ते चला आया। उसके माता पिता बुद्धे थे, आंखों से बेचारे अंधे हो गए